Rama, Hare Hare Hare. Giridhare Radha, Giridhare Radhe. Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jaya Goranitai, 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 Jaya Goranitai. Nitai Gorari Bo, Ribal, Haribo, Haribo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Śrīla Prabhupāda ki jai. Om Namo Bhagavate Vāsudevāya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudite Nashta Prayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Srimad Bhagavatam, Skanda 10, Ikuk, Adhyay 13, Shlok Sankhya 2. Satam Ayam Sarabhratam Nisargaha Yat Arthavani Shruti Etasamapi Pratikshanam Navyavat Achyutasya Yat Diyaha Vitanam Iva Sadhuvartha Satamayam Sarabhratam Nisargo Yadattavani Shruti Chetasamapi Pratikshanam Navyavadachyutasya Yat Triya Vitanam Vasadu Varta Triya Vitanam Vasadu Varta Samayam Sarabhratam Nisargo Yadattavani Shrutite Chetasamapi నేక్షణం నవ్యమదచ్యుతస్య స్త్రియావితానామివ సాధువార్తా. ేక్షణం నవ్యవదచ్యుతస్యమితానామివసాధువార్తా. నిసర్గోర్తవాణీశుతిచేతామీక్షణం నవ్యమదచ్యుతస్య నిరస్తవాణీశుచితేతామీక్షణం నవ్యదచ్యుతస్య స్త్రియావితానామివ సాధువార్తా. ీక్షణం నవ్యవదచ్యుతస్య స్త్రియావితానామివ సాధువార్తా. తామయం సారపితాం నిసర్గోర్తవాణీ శుచితేతామీక్షణం నవ్యవదచ్యుతస్య స్త్రియావితానామివ సాధువార్తా. తామయం సారపితాం నిసర్గోర్తవాణీ శుచితేతామీ ేక్షణ్యవదచ్యుతస్యమివ సాధువార్తా. తామయం సారవితాం నిసర్గోర్తవాణీ శుచితేతామీ తదేక్షణ నవ్యమదచ్యుతస్య స్త్రియావితానామివ సాధువార్తా. మాతాజీ తామయం సారవితాం నిసర్గో ణీ శుచితేతామీక్షణ్యవదచ్యుతస్యమివ సాధువార్తా. మయం ಸರ್ತವಾಣೀ ಶುಚಿತೇತ ಸಾಮಪಿ ಕ್ಷಣ ಮಂಗಳಚ್ಯುತಸ್ಯ ಸ್ಯಾಮಿವ ಸಾಧು ಸತಾಂ ಭಕ್ತೋಂಕ ಅಯಂ ಸ್ವಯಃ ಸಾರಭೃತಾಂ ಪರಮಹಂಸೋಂ ಕಾ ಜಿನ್ಹೊನೆ ಜೀವನ್ ಕಾ ಸಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಿಯಾ ಹೈ ನಿಸರ್ಗ ಲಕ್ಷಣ ಯಾ ಗುಣ ಯತ್ ಜೋ ಅರ್ಥವಾಣಿ ಜೀವನ್ ಕಾ ಲಕ್ಷ್ಯ ಲಾಭ ಕಾ ಲಕ್ಷ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಸಮಜನೆ ಕಾ ಉದ್ದೇಶ ಚೇತಸಾಮಪಿ ಜಿನ್ಹೊನೆ ದಿವ್ಯ ವಿಷಯೋಂ ಕೆ ಆನಂದ ಕೋ ಹಿ ಜೀವನ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ ರಖಾ ಹೈ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಹರ್ ಕ್ಷಣ ನವ್ಯವತ್ ಮಾನೋ ನವೀನ್ ಸೆ ನವೀನ್ತರ್ ಹೋ ಅಚ್ಯುತಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಯತ್ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಹ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ಯಾ ಯೋನ್ ಕಿ ಕಥಾಯೇ ವಿಟಾನಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯೋಂ ಸೆ ಅನುರಕ್ತೋಂ ಯಾ ಲಂಪಟೋಂಕೆ ಇವ ಸದೃಶ್ಯ ಸಾಧುವಾರ್ಥಾ ವಾಸ್ತವಿಕ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಅನುವಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜೀ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ. ಜೀವನ್ ಸಾರ ಕೋ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಪರಮಹಂಸ ಭಕ್ತ ಅಪ್ನೆ ಅಂತಃಕರಣ ಸೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಅನುರಕ್ತ ಹೋತೆ ಹೈ ಔರ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಿ ಉನ್ಕೆ ಜೀವನ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ರಹತೆ ಹೈ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಹಿ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ನಾ ಉಸ್ಕಾ ಸ್ವಭಾವ ಹೋತಾ ಹೈ. ಮಾನೋ ಯೀ ಕಥಾಯೇ ನಿತ್ಯ ನೂತನ್ ಹೈ. ವೇ ಇನ್ ಕಥಾಓಂ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಉಸೀ ತರಹ ಅನುರಕ್ತ ರಹತೆ ಹೈ ಜಿಸ್ ತರಹ ಭೌತಿಕತಾವಾದಿ ಲೋಗ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ತಥಾ ವಿಷಯ ವಾಸನಾ ಕೆ ಚರ್ಚಾಓಂ ಮೇ ರಸ ಲೇತೆ ಹೈ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸಾರಭೃತಾಂ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೈ ಕಿ ಪರಮಹಂಸ ಹಂಸ ದೂಧ ತಥಾ ಪಾನಿ ಕೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮೇ ಸೆ ದೂಧ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ ಲೇತಾ ಹೈ ಔರ್ ಜಲ್ ಸೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ ಕರ್ ಜಲ್ ಸೆ ಜಲ್ ಕೋ ಅಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ ಲೇತಾ ಹೈ. ಇಸ್ ತರಹ ವೇ ಜೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ್ ತಥಾ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ ಲೇತೆ ಹೈ ಔರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಹಿ ಏಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಹರೇಕ್ ಕೆ ಪ್ರಾಣಾಧಾರ ಸಮಜತೆ ಹೈ ವೇ ಸ್ವಭಾವತಃ ಕ್ಷಣ ಭರ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಕಾ ಪರಿತ್ಯಾಗ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ. ಐಸೆ ಪರಮಹಂಸ ಸದೈವ ಅಪ್ನೆ ಅಂತಃಕರಣ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಸಂತ ಸದೈವ ಹೃದಯೇಷು ವಿಲೋಕಯಂತಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ತಥಾ ಭಯ ಇಸ್ ಜಗತ್ ಕೆ ತೋ ಸದೈವ ಬನೆ ರಹತೆ ಹೈ ಕಿಂತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ ಮೇ ಇಸ್ಕಾ ಉಪಯೋಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಲಿಯೇ ಹೀ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಕಾಮಂ ಕರ್ಕೃಷ್ಟ ಕರ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಅಥೇವ ಪರಮಹಂಸ ಹೀ ಕಿ ಹೀ ಯಹಿ ಅಭಿಲಾಷಾ ರಹತಿ ಹೈ ಕಿ ಸದೈವ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಲಿಯೇ ಕರ್ಮ ಕರೆ. ಕ್ರೋಧಂ ಕ್ರೋಧಂ ಭಕ್ತ ದ್ವೇಷಿ ಜನೆ ಜೋ ವೇ ಕ್ರೋಧ ಕಾ ಉಪಯೋಗ ಭಕ್ತೋಂ ಕೆ ವಿದ್ರೋಹಿ ಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಅಭಕ್ತೋಂ ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಔರ್ भय को कृष्ण भावनामृत से विचलित होने के भय से रूपांतरित होते हैं। इस तरह परमहंस भक्त का जीवन पूर्णतया कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। जिस तरह भौतिक जगत में लिप्त व्यक्ति का जीवन एकमात्र स्त्री तथा धन के लिए होता है, भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए जो दिन है आध्यात्मिकतावादी के लिए रात है, भौतिकतावादी के लिए जो मधुर है स्त्रियों तथा धन वही आध्यात्मिकवादी के लिए के द्वारा विष माना जाता है। संदर्शनम विषयमानाम योषिताम च हा हंत हंत विषय क्षण तो साधु। यह श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। परमहंस का परमहंस के लिए कृष्ण ही सर्वस्व है, किंतु भौतिकतावादी के लिए स्त्रियां तथा धन ही सब कुछ है। ओम ज्ञानानंदस्य ज्ञानांजनशलाक चक्षुरुन्मीलितं श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा पृष्ठपादां सहगणलिता शीर्षाकान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानसुते देवी प्रणमामि हरिभिः। वाञ्छाकल्पतरूप्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अभी हम 13वां अध्याय को चर्चा कर रहे हैं 10वां स्कंद का। ये 13वां अध्याय का एक विशेषता है। विशेषता ये है कि श्रील प्रभुपाद जी का अपना जो श्रीमद् भागवतम के जो तात्पर्य हैं उन तात्पर्यों की श्रृंखला में पहले स्कंद के पहले अध्याय से लेके चलते चलते अभी ये श्रील प्रभुपाद जी का आखिरी अनुवाद है और तात्पर्य है। 14वें अध्याय से 10वां स्कंद का 14वें अध्याय से लेके 11वां और 12वां स्कंद उनके शिष्य ने अनुवाद किया है। यानी श्रील प्रभुपाद अपना भगवद्धाम जाने से पहले आखिरी समय में जो भी अनुवाद किया है ये तात्पर्य है। तो इसलिए 13वां अध्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी श्रील प्रभुपाद जी एक तरीके से बताया जाए तो ने सोचा कि जो भी बताना होगा सब कुछ बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं अभी ये 13वां अध्याय करके मैं वापस जाऊँगा। खास करके ये 13वां अध्याय जो है ये ब्रह्मा जी किस प्रकार ग्वाल बालों को बछड़ों को छुराए उसका लीला है। बहुत सारे संप्रदायों में खास करके मध्य संप्रदाय के आचार्य 13वां अध्याय और 14वां अध्याय को सिखाम नहीं करते। वो कहते हैं कि ये दो अध्याय भागवत के नहीं है, भागवत में बाद में जोड़ा गया है। एक तरीके से बताया जाए क्यों, वो एक तरीके से बताया जाए सही भी और गलत भी है। गलत इसलिए है क्योंकि ये दोनों अध्याय भागवत के ही भाग है, महत्वपूर्ण भाग है। साथ साथ में और भी महत्वपूर्ण भाग ये है, बात यह है वो सही इसलिए है क्योंकि वो सहन नहीं कर सकते कि हमारे आचार्य मोहित हो जाए। ब्रह्मा जी कौन है, हम कौन से संप्रदाय के हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के हैं। तो हमारे आचार्य का मोह का चर्चा करना ये उचित नहीं है, इसलिए वो इतना हद तक कहते हैं कि ये दो अध्याय भागवत के पाठ ही नहीं है। जो भी है, आचार्य का मोह भी कृष्ण के लीला का भाग है, ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है। अर्जुन मोहित हो जाता है तो ये समझना चाहिए कि क्या है वो कृष्ण का लीला के अंतर्गत मोह है, वो दैवी शक्ति के द्वारा, भगवान के अंतरंगा शक्ति के द्वारा ये योजना है, अंतरंगा शक्ति की योजना है। इसलिए ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा जी हमारे आचार्य या बड़े वरिष्ठ गुरु होते हैं, उनका मोह का चर्चा नहीं करना ये वैष्णव एटिकेट है, ये आचार है। मान लो कोई वरिष्ठ वैष्णव मोहित हो जाता है या कुछ गलत करता है, उसका चर्चा कभी नहीं करना चाहिए। उसका चर्चा करने के लिए कोई और समाज है, कोई उनके वरिष्ठ लोग हैं, उसका चर्चा वो करेंगे। लेकिन कनिष्ठ लोग जो हैं, हमको कभी चर्चा नहीं करना चाहिए। कोई वरिष्ठ व्यक्ति कोई गलत करता है या मोहित हो जाता है या किसी कारण की वजह से कुछ और कर देता है, तो उसका चर्चा करने की अधिकार जो है वो निम्न स्तर के जो कनिष्ठ लोगों के पास नहीं रहता है। लेकिन बात इधर ये है कि हम ब्रह्मा जी का मोह का चर्चा नहीं कर रहे हैं, कृष्ण का लीला को चर्चा कर रहे हैं, उसके अंतर्गत ब्रह्मा जी का विमोहन हुआ तो इसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। इससे गौड़ी वैष्णव आचार्यों ने ये बड़ा अच्छी तरीके से तर्क करके सुंदर तरीके से इस बात को सिद्ध किया कि ये जो 13वां अध्याय जो है वो और 14वां अध्याय जो है ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसे 13वां अध्याय के संबंध में शुरू होता है कि पहले के अध्याय 12वां अध्याय, 12वां अध्याय में अघासुर का वध हुआ। अघ मतलब पाप, जैसे आप सब जानते हैं अघ मतलब पापमय प्रवृत्ति को अघ कहा जाता है। सबसे घोर पाप होते हैं उसको अघ कहा जाता है, साधारण पापों को पाप कहा जाता है। तो ये अघासुर का वध हुआ, वध होने के बाद आप सब जानते हैं कि सारे ग्वाल बाल रोज जाके बोलते थे अपने घरों में कि आज कृष्ण ने इनको वध किया, इस असुर को वध किया। ऐसा नहीं कि कृष्ण ने इन्हीं असुरों का वध किया जिसका नाम इधर उल्लेखन है, रोज किसी न किसी का वध होता था, कभी रोज चार पांच लोगों का वध होता था, रोज यही चलता था। कृष्ण लीला को प्रत्यक्ष रूप में ग्वाल बाल देखते थे, अपने अपने घरों में आके समूह में रास्ते में चर्चा करते थे, या अपने अपने घरों में जाके ग्वाल बाल अपने माता पिता को, भाई बहन को, सबको बोलते थे ऐसा ऐसा हुआ, ये ऐसा कृष्ण ऐसा किया। तो अभी बात ये है कि अघासुर का वध का जो चर्चा है, ग्वाल बालों ने घर में जाके कहा, जब घर में जाके कहा कि वो ऐसा कहा कि ये जो अघासुर का वध आज हुआ है, लेकिन उस समय ग्वाल बालों का उम्र था 6 साल। अत्यंत में अघासुर का वध हुआ था जब ग्वाल बालों की उम्र 5 साल था, कौमार के बाद पौगंड आता है। वैसे जो अघासुर का वध हुआ था कौमार अवस्था में, कृष्ण की और ग्वाल बालों की कौमार अवस्था में, लेकिन ग्वाल बालों ने ऐसा वर्णन किया कि ये अघासुर का वध जो है पौगंड अवस्था में हुआ। जैसे ये बात उन्होंने सुना तो तुरंत परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा, ब्रह्मन कालांतरम कृतम तत्कालीनाम कथम भवेत। कालांतर कृतम, कालांतर कृतम मतलब जो वो पहले किया गया जो बात है भगवत काल में, बहुत 1 साल पहले की बात है ये, उसको तत्कालीनाम कथम भवेत। पिछले अध्याय के 41वां श्लोक में लिखा हुआ है, परीक्षित महाराज होते हैं कि तत्कालीनाम कथम भवेत। तत्कालीना मतलब अभी हुआ, आज ही हुआ, ऐसा कैसे वर्णन हो रहा है। बाद में यत कौमारे हरिकृतम, यत कौराम कौमारे हरिकृतम, जो चीज कौमार अवस्था में हरि ने कहा किया है, और जगुहु पौगंडक अर्भका, अर्भका ये बालक लोगों ने ऐसा वर्णन किया कि पौगंडक में हुआ। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न है, तब परीक्षित महाराज ने आगे कहा, तद्रूही में महायोगिन, तद्रूही में महायोगिम परम कौतूहलम गुरु। तद्रूही आप हमको बताइए, जरूर बताइए कि परम कौतूहलम, मुझे बहुत कुतूलता है, नूनम यद धरेरेवा माया भवती नान्यथा। ये जो है भगवान की जो माया जो शक्ति है ना, उसका कार्य है, और कोई और किसी काम नहीं हो सकता ये। ऐसा नहीं कि ग्वाल बाल जो है वो गलती से कुछ बोल दिए, नहीं नहीं, ग्वाल बाल जो भी बोलते हैं, कुछ भी कार्यकलाप होता है, वो सब भगवान की जो माया है, माया भवती नान्य था, किसी और का काम नहीं है। भगवान की जो अंतरंगा शक्ति, जो माया शक्ति है, योगमाया शक्ति है, पौर्णमासी है, उसका ही कार्य है। परम कौतूहलम, मुझे बहुत कुतूहलता हो रहा है, आप मुझे समझाइए। और बाद में उन्होंने कहा हम तो अधम क्षत्रिय है, अत्यंत में हमारा परम सौभाग्य ये है कि आप जैसे महान साधु हमारे घर में आते हैं या उनका संगति प्राप्त होता है, यही हमारा सौभाग्य है। वयम धन्यात्मा लोके, मैं बहुत धन्यात्मा, सारे लोक में धन्यात्मा है। क्यों? गुरु रूपी क्षत्र बांधवा, अत्यंत में देखा जाए परीक्षित महाराज साधारण नहीं है, वो किसके पौत्र है? अर्जुन के पौत्र है, भरत वंश के है, कुरुवंश के है, इतने महान है परीक्षित महाराज, जिनको बचाने के लिए स्वयं भगवान शुरुआत में आए थे, गर्भ में आए थे। वैसे परीक्षित महात्मा हमको क्या कहते हैं कि क्षत्र बांध रहा। वयम पिबामो मैं पीना चाहता हूं मुहूर्त तत्व पुण्यम कृष्ण कथामृतम, पुण्यम कृष्ण कथामृत, अपने आप में जो पुण्य है वैसे कृष्ण कथा को मैं पीना चाहता हूँ। जैसे परीक्षित महाराज ने इस प्रकार अपनी नम्रता को व्यक्त किया, ऐसे परीक्षित महाराज स्मरण कर रहे थे। किसका स्मरण कर रहे थे? क्षत्र बांधव, मैं क्षत्रिय होने के नाते सबको रक्षा करना चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया है, एक साधु एक ऋषि है उनके ऊपर मैंने अपराध किया है, उनके ऊपर क्रोध किया है। मेरा धर्म बनता रक्षा करना, लेकिन मैंने क्रोध किया है। उस घृणात्मक जो कार्य उन्होंने किया परीक्षित महाराज ने उसका स्मरण कर, अत्यंत में कुछ लोग पूछते प्रभु जी कैसे नम्र कैसे हो जाए। नम्र होने का एक सरल तरीका है, अपने आप को जानने में नम्र हो जाओगे कुछ और कुछ करने की जरूरत नहीं, डोंट हैव टू डू एनीथिंग। का मैं कितना नीच हूं वो जानने वही काफी है, वही नम्रता है। आपने जो भी पहले गलत कार्य किया उसका स्मरण करो, नम्रता अपने आप आएगी। तो दूसरों को हम गलती दिखाते हैं, ऐसा है वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले ये सोचना चाहिए कि हमको कैसा होना चाहिए, क्या क्या वैसा हूं, तो अपने आप नम्र हो जाओगे, क्योंकि वी आर नॉट अप द एक्सपेक्टेशन। हम आशा करते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है अपने मेरी आशा के अनुसार जीना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो अपनी हैसियत के अनुसार कार्य करना चाहिए, वो सब कुछ बराबर करना चाहिए। वो बराबर नहीं, ये बराबर नहीं है, तो ये व्यक्ति बराबर नहीं, ये परिस्थिति बराबर नहीं है, क्या मैं बराबर हूं? आई एम ओके, खाली ये चीज सोचो हो गया, नम्रता अपने आप आ जाएगी। तो परीक्षित महाराज देखिए, इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या है कि आत्म साक्षात्कार, पहले अपने आप को देखना है, दूसरों को देखने से पहले अपने आप को देखना चाहिए। मैंने जीवन में जो गलतियां किया है क्या नहीं किया है, किया है, अगर किया है तो यही हमारी नम्रता है। दूसरा गलत है, दूसरा सही है, वो देखने से पहले मैं अपने आप को जितना गलती किया है। परीक्षित महाराज इतने महान स्तर में साक्षात सुखदेव उसके साथ में बैठे हैं और कृष्ण कथा का आस्वादन कर, 9 स्कंद हो गया है, सुन लिया है भागवत, अभी क्या सोचते क्षत्र बांधव, ये नम्रता को व्यक्त कर रहे हैं। और करने के बाद वो कहते हैं कि मैं सुनना चाहता हूं, आप बताइए। पुण्यम कृष्ण कथामृतम, अपने आप में पुण्य है, मैं मुहूर्तत्व पिबामो मतलब मैं पीना चाहता हूं, आप सुनाइए। और जैसे ये परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, सुखदेव गोस्वामी एकदम बिल्कुल ट्रांस में चले गए, उनको होश नहीं रहा, अचेत हो गए सुखदेव गोस्वामी। क्यों अचेत हो गए? कृष्ण लीला का स्मरण हुआ। किसका स्मरण हुआ? ये ब्रह्म विमोहन लीला का स्मरण हुआ। ब्रह्म विमोहन लीला ऐसा लीला है जो सुखदेव गोस्वामी को अचेत करा दिया। इतनी शक्ति है ब्रह्म विमोहन लीला में, जिसके अंदर इतनी अद्भुतता है कि सुखदेव गोस्वामी स्वयं जब रासलीला का वर्णन करने के समय सुखदेव गोस्वामी होश में थे। क्यों होश में थे? इसलिए राधा रानी का शब्द सीधा उच्चारण नहीं किया, उनको मालूम था अगर मैं उच्चारण करूंगा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, वहां कृष्ण कथा हो नहीं पाएगी। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला की विशेषता ये है, खाली वो लीला स्मरण मात्र से सुखदेव गोस्वामी अचेत हो गए। अभी आचार्यगण कहते हैं उस समय व्यास देव नारद जी सब लोग बैठे थे, वो सब लोग सुखदेव गोस्वामी को देख के सब लोग जोर जोर से कृष्ण का नाम उच्चारण का संकीर्तन करने लगे। जैसे संकीर्तन करने लगे जोर का आवाज सुनाई पड़ा, तुरंत सुखदेव गोस्वामी होश में आए। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला का विशेषता है, 13वां अध्याय का विशेषता है। सुखदेव गोस्वामी जैसे होश में आए तुरंत उन्होंने परीक्षित महाराज को सलाना किया। क्यों सलाना किया? क्योंकि परीक्षित महाराज का ये प्रश्न के वजह से सुखदेव गोस्वामी का लीला स्मरण हुआ। जो भी हमको लीला स्मरण कराता है, कृष्ण लीला का स्मरण कराता है, उनको उनके प्रति हमारी उनको सलाहना करना चाहिए, उनको कभी निंदा नहीं करना चाहिए। जितना आप उनको सलाहना करोगे, जो आपको कृष्ण का स्मरण कराता है, वो उतना आपका बढ़ोतरी होगा। क्योंकि कृष्ण का स्मरण कराने वाले कौन है? कृष्ण का स्मरण कराने वाले गुरु है। जैसे आप देखिए ग्यारहवां स्कंद में आपको ये 24 गुरुओं का वर्णन है, दत्तात्रेय का, अवधूत का। तो 24 गुरुओं कौन थे? अस्तित्व में एक वेश्या थी, पृथ्वी थी, एक पहाड़ है, ये सब 24 गुरु हैं। तो उनको गुरु क्यों माना? क्योंकि उनकी वजह से उनको कृष्ण का स्मरण हुआ। मान लो कि एक बच्चा भी ड्रामा करता है, कृष्ण का वेश धारण करता है, तो उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा जो है हमको कृष्ण का स्मरण करा रहा है। जो व्यक्ति हमको कृष्ण का स्मरण कराता है वो हमारे गुरु है। इतना हद तक कि मान लो कोई आपको मारने के लिए आया, तब आप तो तुरंत कृष्ण कृष्ण बोलने लगोगे। तो अस्तित्व में जो मारने के लिए आए उसकी वजह से आप कृष्ण का स्मरण हुआ कि नहीं? तो उससे एक्चुअली वो भी एक गुरु है हमारे। जो हमको कृष्ण का स्मरण कराता हमारे गुरु है। इसलिए इधर परीक्षित महाराज को सलाहना करते हैं सुखदेव गोस्वामी। क्या करते हैं? साधु पृष्ठम महाभागा त्वया भागवतोत्तमा, त्वया भागवतोत्तमा, आप भागवतों में उत्तम हो। क्यों उत्तम हो? क्योंकि यन नूतनयसि ईशस्य श्रृण्वन्नपि कथामुहु, श्रृण्वन्नपि कथामुहु। अभी देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। परीक्षित महाराज ने परम कौतूहलम, मुझे बहुत कुतूहलता है, मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्यों हुआ। तो प्रश्न आता है कि क्या परीक्षित महाराज को क्या मालूम नहीं था ब्रह्म विमोहन लीला? परीक्षित महाराज को मालूम नहीं था कि ये ग्वाल बालों ने एक साल के बाद ये कथा क्यों सुनाया? परीक्षित महाराज को मालूम था, क्योंकि बचपन से कृष्ण के बारे में सुनते ही आ रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि श्रृण्वन्नपि कथाम मुहु, तुम बार बार इस लीला को सुने हो कि नहीं? ऐसा नहीं कि तुम जानते नहीं हो। परीक्षित महाराज कृष्ण के बारे में जानने के लिए प्रश्न नहीं पूछा था। परीक्षित महाराज कृष्ण कथा का रसास्वादन करने के लिए प्रश्न पूछा था। प्रश्न जो है, जब भगवद गीता में कोई प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्नों का तरीका है कि मैं जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू नो, मेरा संशय है, संशय दूर करो। लेकिन इधर इस भागवत में जो प्रश्न होते हैं वो संशय दूर करने के लिए नहीं होता है, वो रसास्वादन करने के लिए होता है। कृष्ण कथा का और वर्धन हो, कृष्ण कथा और विस्तार हो, ताकि सब लोग उसको आस्वादन कर सके, इसके लिए प्रश्न पूछा गया है। ये सोचना परीक्षित महाराज को ये बात मालूम नहीं थी इसलिए पूछा, जानकारी के लिए पूछा। अत्यंत में आध्यात्मिक जीवन में जानकारी करके कुछ होता नहीं है। अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है ना, वो कभी आध्यात्मिकता में जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। जिज्ञासु है या रसास्वादन करने के लिए, दो कारण के लिए प्रश्न पूछना चाहिए। इससे परीक्षित महाराज का प्रश्न ये था कि मैं जानना चाहता हूं, ये नहीं था प्रश्न, मैं परम कौतूहलता, कुतूहलता है। मान लीजिए कोई आप किसी से प्रेम करते हो, उनका छोटे से छोटे कार्य भी सुनना चाहते हैं, ये स्वभाव है। इधर त्वया भागवतोत्तम यन नूतनयसि ईशस्य, आपका स्वभाव ऐसा है, आप जब भी कृष्ण के बारे में सुनते हो ऐसा सुनते हो, ये नूतनयसि, ये नया है करके सुनते हो। अत्यंत में आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आप ब्रह्म विमोहन लीला हजार बार सुन चुके हो। परीक्षित महाराज के सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कहते हैं तुम जानते हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक कुतूहलता जो है, ये इससे प्रतीत होता है कि आप जो जानते हो उसी को बार बार सुनना चाहते हो। क्यों सुनना चाहते हो? उसके अंदर नयापन आप देख रहे हो, यानी कृष्ण के अंदर, कथा के अंदर नयापन को देखना, ये भक्त का स्वभाव है। वही कृष्ण है, वही हरे कृष्ण महामंत्र है, वही भागवत है, वही कथा है, लेकिन जब एक भक्त के अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम होता है, उस खिताब को उतना ही उत्साह के साथ सुनता है जितना पहली बार सुना था, जितनी पहली दूसरी बार सुना था, जितनी बार सुनते जाएगा उतना उनके अंदर कुतूहलता होती है। अभी नगा श्रृणवन नपी कथा मुहू, बार बार सुनने पर भी तुम्हारे अंदर ये नूतन ऐसी इस प्रकार की भावना है, इसलिए तुम कौन हो? भागवतोत्तम साधु पृष्ठ महाभागा त्वया भागवतोत्तम। बाद में इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, अस्तित्व परीक्षित महाराज ने कहा था, क्या कहा था उन्होंने? क्षत्रबंधवहा, उन्हें शब्द इस्तेमाल किया था, हम कौन है? क्षत्रबंधु है। तब उस बात को निराकरण करते हुए कहते हैं, हे परीक्षित, तुमने अपने आप को क्षत्रबंधवहा कहा ना, तुम नहीं हो, तुम कौन हो? सताम अयम सारभूताम निसर्गो यदर्थवाणी श्रुतिचेतसामपि प्रतिक्षणम नव्यवत अच्युत त्रियाविताम इव साधु वार्ता। ये श्लोक उस प्रश्न के जवाब में है। किस प्रश्न के जवाब में है? कि अपने आप को तुमने क्या कहा था? क्षत्रबंधव कहा था, नहीं क्षत्रबंधु नहीं हो, तुम क्षत्रिय भी नहीं हो, तुम कौन हो? तुम परमहंस हो। डायरेक्टली नहीं कहा, इनडायरेक्टली कहा। इनडायरेक्टली कैसे कहा? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक कृष्ण के बारे में सुनने की कुतूहलता है और कृष्ण कथा को बार बार सुनने पर भी तुमके इसके अंदर नयापन दिखाई पड़ता है। ये जो नयापन जिसके अंदर दिखाई पड़ता है ना, वो साधारण व्यक्ति नहीं, वो सब परमहंस है। यानी आपके अंदर वो नयापन है कृष्ण कथा में बार बार सुनने पर भी वो नयापन दिखाई पड़ रहा है इसके अंदर, इसका अर्थ है कि आप परमहंस हो, आप क्षत्रबंधु नहीं हो। तो इस बात को बताने के लिए इस श्लोक को उच्चारण किया गया है। टू टेल दैट यू आर नॉट अ क्षत्रबंधु, आप परमहंस हो। तो परमहंस का लक्षण क्या है वो हम थोड़ा सा जानने के लिए प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि सताम, सताम मतलब भक्त, महान भक्त होते हैं। सताम अयम सारभूताम निसर्गो, अयम सारभूताम निसर्गो, अयम शब्द के द्वारा सूचित किया जा रहा है ये जो बात जो पिछले श्लोक में कही गई है। क्या बात कही गई है? कि नूतनयसी ईशस्य श्रृण्वन्नपि कथामुहु, तो अयम शब्द उसके साथ सूचित किया जा रहा है। ये जो बात है जिन भक्तों के अंदर, सताम अयम, जिन भक्तों के अंदर ये भावना है, क्या भावना है? कि नूतनयसी ईशस्य कथामुहु श्रृण्वन्नपि कथामुहु, जिसके अंदर ये बात है बार बार सुनने पर भी कृष्ण के बारे में वो सुनने का मन करता है, वैसे सताम वैसे भक्त को क्या बोला जाता है? सारभूताम कहा जाता है। सारभूताम, सारभूताम का अर्थ क्या देखते हैं? सारभूताम का अर्थ है जो सार को स्वीकार करते हैं, जीवन का सार को स्वीकार करते हैं। जीवन का सार है कृष्ण कथा, जीवन का सार है कृष्ण कथा। इसलिए भक्त को वैष्णव को कहा गया है सारग्राही। वैष्णव जो है सारग्राही, सार को स्वीकार करता है। सार का अर्थ क्या है? एसेंस। हमारा जीवन का एसेंस क्या है? हमारा जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? कृष्ण कथा का श्रवण करना, कृष्ण कथा के प्रति आसक्ति बढ़ाना, यही हमारा जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन का सार है। और जो भी है, और भी जो भी दुनिया में चल रही है, जो भी हमारा संपर्क में आते हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, वो सब केवल हमारे मन को विचलित करने के लिए है। जितना परेशान करना या परेशान दूसरों को परेशान करना गुनाह है, परेशान होना भी गुनाह है। अगर कोई व्यक्ति बोले मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूं, तो डिस्टर्ब करने से ज्यादा डिस्टर्ब होना गुनाह है। क्योंकि अगर मान लो किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो तो किसी को परेशान कर रहे हो तो वो इतना गुना किसके प्रति? दूसरों के प्रति है। लेकिन डिस्टर्ब हो जाना, परेशान हो जाना, विचलित हो जाना, दिग्भ्रमित हो जाना, ये अपने प्रति, अपने के प्रति गुना है। इट इज ऑफेंस, इट इज वायलेंस टुवर्ड्स योर सेल्फ, हमारे प्रति वायलेंस है। तो इसलिए सारभूताम, जो सारग्राही वैष्णव होता है ना, वो कभी विचलित नहीं होता है। वो जानता है प्रत्येक परिस्थिति के पीछे कृष्ण का हाथ है, प्रत्येक चीज जो मेरे जीवन में घट रहा है उसके पीछे कृष्ण का हाथ है। और मुझे क्या करना चाहिए, बाकी सबको बाजू में रखते केवल कृष्ण कथा में अपने मन लगाना चाहिए, हरिनाम में मन लगाना चाहिए, जो भी सेवा में उसमें मन लगाना चाहिए, बाकी सब में कोई सब सार नहीं है। मान लो कि इतने सारे जीवन में घटनाएं घटी है, भौतिक जीवन में हो, वो सारे घटनाओं को कुछ मतलब है, चाहे एग्जाम में फेल हुआ चाहे एग्जाम में पास हुआ, आप 10th स्टैंडर्ड में कुछ बहुत अच्छा नंबर प्राप्त किए, क्या उसका क्या अभी फर्क पड़ता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बहुत करोड़पति बन गया, कोई रोडपति बन गया, या कोई मार खाया, क्या कोई अच्छा चीज खाया, कोई कड़वा चीज खाया, ये सब चीजें कुछ महत्वपूर्ण कुछ महत्व नहीं लगता। इसलिए भगवान भगवता में कहते हैं द्वंद्व मोहेन भारत, ये द्वंद्व से मुक्त होके केवल हर जगह हर परिस्थिति में कृष्ण को ही स्मरण करता है, कृष्ण को ही स्वीकार करता है, उसको सारग्राही कहा गया है, उसको परमहंस कहा गया है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस तात्पर्य में एक परमहंस हंस होता है, वो क्या करता है, दूध और पानी को अलग करता है। वैसे कलयुग में हंस दिखाई नहीं पड़ते, बतख दिखाई पड़ते हैं। किसी कोई ने कहा ये बतख को देख बोला हंस, ऐसा लगता है कि हंस जैसा लगता है, लेकिन हंस नहीं हो, हंस एकाध अगर दिखाई पड़े मानसरोवर में दिखाई पड़ेगा अभी, और कहीं दिखाई नहीं पड़ता अभी। कलयुग में हंस लोगों ने सोचा कि ये रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन इतना अद्भुत है ये पक्षी हंस, वो क्या करता है, दूध और पानी मिला के दो, वो खाली दूध पिएगा पानी को छोड़ देगा, दूध पिएगा पानी को छोड़ देगा, इसके अंदर इतना शक्ति रहता है। तो मैं पूछा था किसी ने, आपने हंस देखा किसी को, कुछ लोग मानसरोवर जाके आए थे यात्रा में, किसी को हंस देखा तो कोई उनको भी दिखा नहीं, दे नॉट फाइंड इट। आप में से किसी ने देखा हंस को, मालूम नहीं मुझे, जो देखा कहाँ देखा, गांव में, अच्छा अच्छा पाल के रखते हैं, अच्छा वो बात मैं सुना कलीग में रहे सर, हो सकता है वो हंस का कुछ आभास हो, लेकिन असली हंस उनके सामने दूध और पानी रखेंगे पीता है, खाली दूध पीता है, करता है और किसी ने देखा नहीं, मैं तो नहीं देखा, दूध पानी अलग करता है, जो भी है ठीक है, मिल गया तो अच्छा है, गांव में कोई सत्युग का प्रभाव हो गांव में। सत्य त्रेता द्वापर में दिखाई पड़ते थे हंस, लेकिन अभी कलयुग में दिखाई नहीं पड़ते हंस, दे आर नॉट सीन सो फ्रीक्वेंटली। कि मुझे किसी ने कहा कि मानसरोवर में दिखाई पड़ते हैं, अभी आपके गांव में भी है तो अभी दिखता है, गांव का एड्रेस देना बताना पड़ेगा, ये गांव में भी जाके देखो हंस उनको देखो। ठीक है, नहीं हो परमहंस को, हाँ परमहंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान लो कि कोई परिस्थिति हमारे सामने आया और इस परिस्थिति में केवल कृष्ण को ही स्वीकार करते, बाकी जो जितनी भी चीजें उसको छोड़ देते हैं, उसे कुछ मतलब नहीं मुझसे। मान लो किसी ने आपको कुछ कहा, कोई ऐसी परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में कृष्ण आपको क्या कहना चाहते हैं उसका सीख जो है लेते, बाकी सब जो है वो छोड़ देते हैं। ये परमहंस का स्वभाव है, ये भक्त का स्वभाव है। तो सतामयम सारवताम निसर्ग, निसर्ग कहते कि उनका स्वभाव होता है। यदर्थवाणी, यदर्थवाणी श्रुति चेतसामपी, यदर्थ ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अर्थ, अर्थ का अर्थ क्या है, अर्थ का अर्थ है कि जो हमारे लिए काम का है वो अर्थ है, जो काम का नहीं है वो अर्थ नहीं है, यानी जिससे हमारा मतलब है उसको अर्थ कहा जाता है, मीनिंग, या इसके ये मेरे जीवन के साथ क्या 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 संबंध है, तभी उसी चीजों को स्वीकार करना है, बाकी सबको छोड़ देना है। अर्थ जैसे आप सब जानते हो, स्वार्थ स्वार्थ अर्थ एक ही शब्द है, आपको ये भागवत का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ये मालूम होगा कि नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशयाये बहिरत्तमानिना, नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशयाये बहिरत्तमानिना। जो भौतिकवादी हैं वो जानते नहीं है हमारे जीवन में एक ही अर्थ है, मीनिंगफुल चीज एक ही है, वो क्या है, वो विष्णु कृष्ण है। और जो भौतिकवादी होते हैं बहिरर्थ मानिना, बहिर्वस्तु को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अभी आप ध्यान में रखिए, इस जीवन में जो भौतिक चीजें हो ना, उनका मूल्य उतना ही है जितना आप देते हो, उसका मूल्य इतना है उतना है जितना आप देते हो। मान लो कोई एक एक वस्तु है, मोबाइल है, टीवी है, उसका दाम कितना है, कोई बोला है 25,000 का है। तो अगर आपके मन में ऐसा नहीं, मुझे किसी भी हालत में चाहिए, उसके बिना जी नहीं सकता हूं, तो 50,000 देके भी खरीदोगे उसको, है कि नहीं? मान लो कि एक वस्तु जो है 1,00,000 रुपए का भी है, आपको वो चाहिए नहीं है, चाहिए नहीं है, उसका वो मूल्य कितना हुआ, जीरो हो गया। तो इस भौतिक वस्तु का मूल्य, भौतिक जगत का मूल्य, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे मान लो आपका दुश्मन है, तो वो दुश्मन का शक्ति उतना ही है जितना आप उसको देते हो, जितना महत्व उसको देते हो उतना उसका शक्ति है। अगर आप उसका परवाह नहीं करोगे तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। जितना आप उनके बारे में सोचोगे उसका शक्ति बढ़ता है। जैसे मान लो कि आपका कोई विरुद्ध है, कोई बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आपको कोई निंदा करता है, आपको कोई बहुत तंग कर रहा है, जितना आप उनके बारे में सोचोगे उसको उतना शक्ति उसका बढ़ता है। आप जितना लापरवाह करोगे उतना ठंडा हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वो तभी हो पाएगा जब हम ये जानते हैं कि हमारा जीवन का अर्थ कृष्ण है। क्योंकि मन जो है किसी न किसी तरह सोचना ही है। अगर आप कृष्ण के बारे में नहीं सोचोगे तो अनेकों अनेकों लोगों के बारे में सोचोगे, वो इसके बारे में सोचोगे, उसके बारे में सोचोगे, एक उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ये कहा। ये मन का स्वभाव है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वो जानता है सारभ्यताम, सारभ्यताम, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, सारभ्यताम। और अर्थ वाणी श्रुति चेतसामपि, वाणी श्रुति चेतसामपि, क्या करता है, हमारा वास्तविक अर्थ कृष्ण है। उस कृष्ण को कहां बैठाता है, वाणी मतलब अपनी वाणी में, वाणी मतलब बोलना, श्रुति मतलब कानों में, और चेतसाम। तो एकाचार्य कहते हैं श्रुति और वाणी, और जैसे हम भगवान के बारे में सुनते हैं और बोलना शुरू करते हैं, कृष्ण निश्चित रूप में अपने चित्त में बैठ जाते हैं। भगवान को हमारे चेतना में, अपने मन में बैठाना है, चेतना में बैठाना है, तो क्या करना होगा, श्रुति चेत, वाणी श्रुति, भगवान के बारे में सुनना है और उनके बारे में बोलना है। अभी प्रतिक्षणम नववत अच्युतस्य यत, तो कोई प्रश्न उठाए कि कृष्ण तो मन में बैठ गए, चेतना में बैठ गए, उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद वही है। भौतिक वस्तु में क्या होता है, मान लो एक चीज प्राप्त हुआ तो उसके बाद क्या क्या लेना है, मान लो कि आप कुछ चीज हासिल किया, जैसे कोई हर चीज हासिल किया तुरंत कोई और गंतव्य रहता है, कोई और चीज को हासिल करना है। मान लीजिए आपको कुछ 1,00,000 रुपए कमाया तो बाद में सोचेगा और 1,00,000 कैसे कमाऊ, 2,00,000 कैसे कमाऊ। तो आपने सोचा कि नहीं बस मुझे ये घर मिल गया तो अभी शांति रहेगी, तो घर मिलने का सोचोगे नहीं थोड़ा गाड़ी भी हो जाए, तो गाड़ी मिलने का सोचोगे थोड़ा परिवार भी हो जाए, परिवार मिलने का सोचोगे और कुछ हो जाए, क्योंकि गंतव्य नहीं रहता है। तो ये बात ये है, कोई कहे जैसे आपके चेतना में कृष्ण बैठ गए, आपने बार बार कृष्ण का नाम सुना, कृष्ण के बारे में सोचते रहे, और जैसे आपके चेतना में कृष्ण संत सदैव हृदयेश विलोकयन्ति, आप कृष्ण को अपने हृदय में देख रहे हो, कृष्ण को चेतना में, उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वही कृष्ण जो है आपको नया नया स्वरूप दिखाई पड़ता है, नयापन दिखाई पड़ता है। नवा नवा दामन्य उदितम वृंतम आसीत, नवदम दामन्य वृंतम, हमारा कृष्ण भावना ऐसा है कि वही हरे कृष्ण महामंत्र है, वही भागवतम है, हर चीज वही है, वही विग्रह है, लेकिन उसके अंदर इतने वैरायटी, इतने वैरायटी हैं। इधर कहा गया है प्रतिक्षणम नववत अच्युतस्य, भगवान का नाम इधर अच्युत कहा गया है, जो कभी च्युत नहीं होते अपनी पदवी से। क्यों नहीं च्युत होते हैं, क्योंकि एक बार कृष्ण प्राप्त हो गए किसी को, उनको कोई और चीज की जरूरत नहीं पड़ता है। इस जगत के प्रत्येक वस्तु जो है च्युत है, मतलब जैसे प्राप्त हुए उसका जो महिमा है, उसका जो आपका उनके प्रति जो उस वस्तु के प्रति जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है। जैसे अंग्रेजी में एक चीज है, इकोनॉमिक्स में आता है, उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। मान लो कि आप नया कार खरीदा 10 लाख रुपए में, जैसे खरीदा 10 दिन के बाद आपको अच्छा ही लगा, बेचना चाहते तो कितना हो गया उसका दाम, 8 लाख हो जाता है कम से कम। कभी कभी ऐसी चीजें हैं 5 लाख हो जाता है, 50% हो जाता है, वो बढ़ता नहीं है, वो कम हो जाता है। लेकिन भगवान एक बार किसी को प्राप्त हो गए, वो हमेशा उनका प्रति जो आस्था है वो बढ़ते ही जाता है, वो कम नहीं होता है। इससे भगवान को इधर अच्युत कहा गया है, अच्युत त्रियाविता नाम यो साधु वार्ता, एक उदाहरण दिया गया है। क्योंकि ऐसी चीजें भगवान के विषय में कुछ बताए तो लोगों के बद्ध जीवों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे मन क्या है, मन के अंदर भौतिक चीजें भरा हुआ है। तो कृष्ण के विषय में समझाने के लिए बहुत सारे भौतिक उदाहरण इस्तेमाल किए गए हैं। ये उदाहरण केवल एक अंदाज देने के लिए मात्र है, ये उदाहरण जो है सबूत नहीं माना जाता है। जैसे एक बार श्री भक्तिनाथ ठाकुर से एक व्यक्ति ने पूछा, आप जीव और भगवान के बीच में भेद को वर्णन करने के लिए जैसे अग्नि और स्फुल्लिंग का वर्णन करते हो, उदाहरण देते हो, सागर का और जल का उनका उदाहरण देते हो, आपने अभी कहा वो कृष्ण दिव्य है, अकृष्ट दिव्य है तो भौतिक उदाहरण क्यों दे रहे हो? तब भक्तिनाथ ठाकुर उसका निराकरण करते हैं। उदाहरण दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम बद्ध हैं, हम दिव्य वस्तुओं के बारे में सोच नहीं सकते, इसलिए केवल भौतिक चीजों के बारे में सोच सकते हैं। हमारा अनुभव के अंतर्गत जो बातें हैं उसी के बारे में हम स्मरण कर सकते हैं, उसी को हम समझ सकते हैं। इसलिए जो अनुभव के परे, इंद्रियों के परे वस्तुओं को समझाने के लिए हमारे अनुभव के अंतर्गत जो बातें हैं उसका उदाहरण दिया जाता है, ताकि हम उस बात को समझे, एक कम से कम एक कल्पना तो हो जाए कि क्या है। तो जो भक्त भगवान के प्रति इस प्रकार की आसक्त हो जाता है, वो आसक्ति किस प्रकार रहता है, एक उदाहरण दिया गया है इधर, स्त्रियाविता नाम, जो स्त्रियाविता नाम वितानाम इव साधुवार्थ, जो स्त्रिया वितानाम जो स्त्रियों के प्रति आसक्त रहता है वो कैसे रहता है, वो हमेशा स्त्रियों के विषय में सुनना चाहता है, उनको दिन भर यही चाहिए। अब देखिए कोई लड़के को किसी स्त्री के प्रति आसक्ति हो गया, वो दिन भर फोन में बैठा रहता है, बहुत बात करता रहता है, हमेशा वो मैसेज भेजता रहता है, उधर रात भर यही चलता रहता है, 24 घंटे यही काम चलता रहता है। क्यों? ये आसक्ति हो गया, उनका प्रत्येक चीज नया नयापन लगता है, उन्होंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। क्योंकि स्त्री पुरुष के बीच में जो आसक्ति है वो सबसे स्ट्रांग है इस जगत में, इससे बढ़कर कोई आसक्ति नहीं है। और इस जगत में जो स्त्री पुरुष के बीच में जो संबंध है, जितना किस प्रकार एक लड़का एकदम बिल्कुल आसक्त हो जाता है, उसके बिना जी नहीं सकता, उसी प्रकार एक भक्त जो है भगवान के बिना जी नहीं सकता, कृष्ण के बारे में सुने बिना जी नहीं सकता, ये उसका स्वभाव रहता है। ये जो है परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आप इस प्रकार के हो, यह साधुवार्थ नाम इव साधुवार्थ, दोनों के बीच में जो वार्ता होती है या उसके विषय में जो वार्ता होती है, स्त्रियों के विषय में जो पुरुष सुन के एकदम बिल्कुल हमेशा 24 घंटा स्मरण करता रहता है, उसी प्रकार ये भक्त जो है वो करता है। प्रभुपाद जी आखिरी में लिखते हैं, एक भौतिकवादी व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति, इन दोनों के बीच में दिन और रात का अंतर है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहा गया है, यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृत संयमी, यानिशा सर्वभूतानि तस्यां जागृति चापश्यतो मुने। तो ये जो श्लोक है जिसके अंदर दो प्रकार के लोग है, मेटेरियलिस्टिक पीपल, स्पिरिचुअल पीपल, जहाँ आध्यात्मिकवादी के लिए दिन होता है, भौतिकवादी के लिए रात है, और भौतिकवादी के लिए जो दिन है, आध्यात्मिकवादी के लिए रात है। तो इन दोनों के बीच में बहुत दिन रात का अंतर है। जिस प्रकार भौतिक विषय वस्तु उनको सुनने के पीछे बहुत लालसा रहती है, उसी प्रकार भौतिकवादियों का लालसा रहती है भौतिक विषय वस्तु के बीच में, भक्त का लालसा रहता है कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, तो ये भक्त का लक्षण होता है। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, अरे ये तो परमहंसों के लिए है, हम तो बद्ध जीव है, हम तो उतना बड़े नहीं है, बोलो आर्गुमेंट देते हैं भक्त लोग। कभी भी कुछ बात कहते हैं ना, प्रभु जी आप थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, कंप्लेन क्या रहता है, तुरंत क्या बोलते हैं, ये सब बड़े बड़े लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है, बड़े भक्तों के लिए। लेकिन जो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम परमहंस नहीं है लेकिन परमहंस के पदचिन्ह में चल रहे हैं, हम महाजन नहीं है लेकिन महाजन के पदचिन्ह में चल रहे, इसलिए हम भी महाजन है। एनीबडी हु फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ महाजना इज ऑल्सो ए महाजन। और महाजन ही ने बताया सुगंत, उनके अलावा और कोई रास्ता तो है नहीं, और कोई रास्ते में चलोगे तो भौतिकवादी रास्ता है। तो भले ही महाजन नहीं है, भले ही परमहंस नहीं है, ये हमारे आदर्श कौन है, परमहंस है। हमारे आदर्श कौन है, महाजन है। हमारी रास्ता क्या है, वो रास्ता है, वो स्वाभाविक तरीके से चलते हैं, हम होश में चलते हैं, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, रास्ता तो वही है। इसलिए भले ही हम उन्नत भक्त नहीं है, उन्नत भक्त कैसे आचरण करते हैं उस प्रकार हमको आचरण करना जरूरी है। ये बताना, अरे हम तो उतने बड़े नहीं है, कौन मना किया बड़ा बनने के लिए, फिर मना किया। एक बार श्री प्रभुपाद जी एक भक्त आके प्रभुपाद जी ने ऐसे उसको समझाया, जीवन में दुख आता है सहन करना सीखो, जैसे हम लोग भी करते हैं। तो उस भक्त ने कहा, प्रभुपाद जी यू आर ए प्योर डिवोटी। प्रभुपाद ने कहा, हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम बिकमिंग प्योर डिवोटी। कौन रोक रहा है तुमको उस भक्त बनने से, कोई रोक रहा है क्या, कोई नहीं रोक रहा है, अपने आप को रोक रहा है, यही समस्या है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो डोंट स्टॉप योर सेल्फ इन प्रोग्रेसिंग, अपने आप को आध्यात्मिक प्रगति में प्रगति करने से रोको मत, प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न? ठीक, मंत्राश्रीमद्भागवतम की श्रीलोपाद की चर्चा।